जब से आरव को कबीर से अनुष्का की मौत के बारे में थोड़ा बहुत पता चला था, वो उसकी मौत की असली वजह जानना चाहता था। अनुष्का की मौत हॉस्पिटल में हुई थी, वो भी सर्जरी के टाइम, इसलिए आरव को सच सिर्फ अयान बता सकता था। सच जानने के लिए आरव ने अयान को पार्क में बुलाया, लेकिन अयान ने उसे बातों में टाल दिया था। अयान ने कुछ नहीं बताया तो आरव इरिटेट होकर वहां से जाने लगा। तभी उसे कुछ सूझा और वो वापस अयान के पास जाने लगा। वहीं आरव को फिर से अपने पास आते देख अयान के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आरव तेजी से उसके पास आया और अयान को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, ये गलती उससे नहीं हुई है ना? बोलते हुए आरव की आवाज कांप रही थी। कहीं ना कहीं उसे भी इस बात पर यकीन था, लेकिन वो यही चाहता था कि अयान उसे ना कह दे। अयान ने आरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें झुकी हुई थी तो आरव ने फिर से कांपती आवाज में कहा, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो उससे बहुत प्यार करती थी, फिर इतनी बड़ी गलती उससे कैसे हो सकती है? प्लीज कह दो अयान, ये झूठ है। अयान ने आरव की तरफ देखा और धीरे से कहा, सर्जरी सक्सेसफुल हो गई थी, पर एन मोमेंट पर उसने गलत नर्व कट कर दी थी, जिसकी वजह से अनु के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। उसने ये जानबूझकर नहीं किया, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। आरव ने अयान को छोड़ दिया। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय अफसोस के भाव थे और उसने उसी लहजे में कहा, हाँ जानता हूँ, तभी मुझे डर लग रहा है कि अगर सच उसके सामने आया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। वो अनुष्का की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। जब उसे पता चलेगा कि अनुष्का की मौत उसी के हाथ से हुई है तो पता नहीं उस पर क्या बीतेगी। प्लीज़ उसे कुछ मत बताइएगा, ये सब अनजाने में हुआ था और मैंने भी मामले को संभाल लिया था, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन बीच में आप आ गए। जब उसने पहली बार आपसे बदला लेने का कहा था तब मैंने उसे बहुत समझाया था कि ये आपने नहीं किया है। सॉरी, मैं उसे सच नहीं बता सकता था, इसीलिए उसे आपके पास आने से रोक नहीं पाया। अयान ने आरव को सब कुछ बता दिया था। अयान और आरव अब एक बेंच पर बैठ गए थे। दोनों की नज़रें नीचे की तरफ झुकी हुई थीं और दोनों अनुष्का के बारे में बात कर रहे थे। आरव ने धीरे से पूछा, पूरी टीम के सामने तुम्हें उसे संभालना मुश्किल रहा होगा ना? यही वजह थी ना कि तुम उसे अपने साथ कई बार ओटी में नहीं आने देते थे? अयान ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने सबको किसी न किसी बहाने से बाहर भेज दिया था। उसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अनु को अपने सामने इस हाल में देखकर वो शॉक में चली गई थी। आपके टाइम में भी यही हुआ था, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तब वो पागलों की तरह रोने लगी थी और खुद को संभाल नहीं पाई थी। जैसे तैसे उसने खुद को संभाला तो ओटी में आने की जिद की। मैं उसे सच नहीं बता सकता था, इसीलिए उसे किसी न किसी बहाने से ऑपरेशन थिएटर से उस वक्त दूर रखा जब अंदर उसका कोई अपना होता था। वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, प्लीज़ आप इस वजह से आप उसे जज मत कीजिएगा, बस इमोशनली थोड़ी वीक हो जाती है। अयान के सब कुछ बताने के बाद आरव ने कुछ पल उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, पता है तुम हो तो मुझे हर चीज़ की तसल्ली रहती है, किसी दिन मैं ना भी रहा तो तुम आयु और दादी को मुझसे बेहतर संभाल लोगे। आरव की बात सुनकर अयान ने उसे घूर कर देखा और हल्के गुस्से में कहा, और अब ये ऐसी बातें आप किस खुशी में कर रहे हैं? आप कहीं नहीं जा रहे हो, हम हमेशा साथ रहेंगे। मुझे अच्छा लगता है आपके चेहरे पर गुस्सा देखना जब मैं आयु को हक करता हूँ। आज तुमने जो बताया है उसे जानने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा जब तुम उसे हक करोगे। तुम उसके मेंटोर, दोस्त, सब कुछ हो। थैंक यू सो मच इस बात को सबसे हाइड करने के लिए। अगर ये बात बाहर आती तो उसका करियर खत्म हो जाता। उससे बढ़कर अगर उसे पता चलता है कि उसकी बहन की मौत उसी के ही हाथों से हुई है तो वो कभी जी नहीं पाती। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे लगा ये तुमसे हुआ है, आरव ने इमोशनल होकर कहा। वहीं अयान आरव की तरफ हैरानी से देख रहा था। आरव जो किसी को थैंक यू और सॉरी नहीं बोलता था, वो आज दोनों शब्द एक साथ बोल रहा था। अयान ने आरव की तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा, लगता है आज आप सच में अपने होश में नहीं हैं। अभी अभी आपने मेरे को थैंक यू और सॉरी दोनों बोला, आप मेरे ही भाई हो ना? आरव ने हल्का मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिर उन दोनों ने वहां बैठकर कुछ देर बात की और एक दूसरे से वादा लिया कि वो इस बारे में कभी किसी से जिक्र नहीं करेंगे। कुछ देर बाद आरव और अयान दोनों वहां से चले गए थे। आरव घर पहुंचा तब तक सुबह के 7 बज चुके थी और आयु उठकर हॉस्पिटल के लिए तैयार हो चुकी थी। आरव रूम में आया तो उसे देखते ही आयु ने कहा, सुबह सुबह कहाँ चले गए थे, कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे। आरव ने एक नज़र आयु की तरफ देखा, उसने लूज शर्ट और नीचे पैंट्स पहन रखे थे ताकि उसका बेबी बम्प ना दिखे। आयु को देखते ही उसे कुछ देर पहले हुई अयान की बातें याद आने लगी। आरव काफी देर से चुपचाप आयु को देख रहा था। ये चीज़ आयु को थोड़ी इरिटेट करने लगी। वो आरव के पास आकर बोली, तुम मुझे इस तरह अजीब नज़रों से क्यों देख रहे हो? क्या मैं कुछ ज़्यादा ही मोटी लग रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, आरव ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, चलो तुम नीचे जाओ, मैं तैयार होकर आता हूँ, फिर तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूंगा। अयान वहाँ पर होगा, उसके साथ तुम डॉक्टर के पास चली जाना। मैं अयान के साथ क्यों जाऊँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, आयू ने मुंह बनाकर कहा, जिस पर आरव ने बिना आर्ग्यूमेंट किए हामी भर दी थी। आरव का बर्ताव आयू को काफी अजीब लग रहा था। आज वो ना तो उससे बहस कर रहा था और ना ही किसी बात के लिए जिद कर रहा था। आरव चुपचाप आयू की हर बात को माने जा रहा था। आयू आरव के पास आई और उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक, आयू बोलते हुए रुक गई। उसने महसूस किया आरव का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा बढ़ा हुआ था। उसने आरव को पकड़कर बेड पर बिठाया और गुस्सा करते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम बाहर घूम रहे हो, मैं आज हॉस्पिटल नहीं जा रही और तुम भी कहीं नहीं जाओगे, चुपचाप घर पर बैठकर रेस्ट करो। आयू को शक ना हो इसलिए आरव ने इस बार जवाब में कहा, मेरी फिक्र मत करो और खुद का ध्यान रखो, तुम हॉस्पिटल चली जाओ, कबीर ड्रॉप कर देगा, मैं घर पर रेस्ट कर लूंगा, डॉक्टर मानसी से अपना प्रॉपर चेकअप करवा लेना ताकि आगे किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन ना हो। आयू ने चुपचाप आरव की बात पर हामी भरी और फिर वहां से बाहर आ गई। उसे आरव का बदला हुआ बर्ताव काफी खटक रहा था। आरव को अनुष्का की मौत के बारे में पता चल गया था। अनुष्का की मौत ऑपरेशन थिएटर में आयू की गलती की वजह से हुई थी। ये सब जानने के बाद आरव कुछ देर के लिए उस सच को हजम नहीं कर पा रहा था। जब वो आयू से मिला तो उसका बर्ताव ना चाहते हुए भी काफी अजीब हो गया था, जिसे आयू को उस पर शक हो गया था। आयू हॉस्पिटल जाने का बोलकर कमरे से बाहर निकली और नीचे की तरफ जा रही थी। उसके मन में काफी कुछ चल रहा था जो आरव से जुड़ा हुआ था।
आयू ने अपने मन में कहा, आरव को क्या हो गया है, कहीं वो मेरी प्रेगनेंसी को लेकर तो अपसेट नहीं है? अगर उसे इस तरह मेरे साथ अजनबियों जैसा ही बिहेव करना है तो फिर सीधे सीधे बोल क्यों नहीं देता, ठीक है मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चे, करवा लूंगी मैं अबॉर्शन, वो यही चाहता है और तभी उसे खुशी मिलेगी। सोचते हुए आयु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लगा कि आरव उसके साथ ऐसा बर्ताव इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने आरव की बात नहीं मानी थी। आयु उन्हीं नम आंखों से नीचे आई। प्रेगनेंसी की वजह से उसे वैसे भी मूड स्विंग्स हो रहे थे और वो छोटी छोटी बातों पर रोने लगती थी। नीचे आने पर गौरवी जी ने उसे इस तरह परेशान देखा तो तुरंत पूछा, रात को तो सब ठीक लग रहा था, अब तुम दोनों फिर से झगड़ लिए हो क्या? मुझे आरव को समझाना होगा कि तुम्हें इस कंडीशन में खुश रहना है, ना कि इस तरह रोते हुए। रहने दीजिए दादी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब उसे सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं है तो आप उसे कब तक समझाएंगी? मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, उसे कह दीजिएगा कि वो जो चाहता है वो होने जा रहा है। आयु ने इतना ही कहा और फिर वहाँ से चली गई। गौरवी जी को आयु की बातें समझ नहीं आई, वो हैरानी से खुद से बड़बड़ाकर बोली, आरव क्या चाहता है जो ये करने जा रही है, पता नहीं इन दोनों के बीच क्या चलता रहता है, जब देखो बच्चों की तरह झगड़ा करते रहते हैं। गौरवी जी ने आयु की बातों की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया और अपने ही कामों में लग गईं। वहीं आयु परेशान हालत में हॉस्पिटल पहुंची। आते ही वो सीधे मानसी के केबिन में गई। आरव के रूखे बर्ताव की वजह से उसका चेहरा उतरा हुआ था। आयु का उतरा हुआ चेहरा देखकर मानसी ने कहा, तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुम अपने हस्बैंड को नहीं मना पाई। आयु मानसी के सामने आकर बैठी और फिर बुझी हुई आवाज में कहा, वो मान गया है लेकिन उसके बाद से ही ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो मुझे जानता ही नहीं हो। मुझे अच्छे से पता है वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी। तुम ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। अक्सर कपल्स के बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन बच्चे हो जाने के बाद सब ठीक हो जाता है। देखना, ये दोनों बच्चे तुम दोनों के बीच के सारे डिफरेंस दूर कर देंगे, मानसी ने आयु के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा। आयु ने कुछ पल मानसी के चेहरे को देखा और फिर नम आंखों से कहा, वो आरव खुराना है मानसी, उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है, बहुत जिद्दी है वो। अगर उसने किसी चीज़ के लिए जिद की है तो जब तक उसकी जिद पूरी नहीं हो जाती वो मुझसे ठीक से बात नहीं करेगा। बोलते हुए आयु कुछ पल रुकी और फिर खुद को मजबूत करके मानसी की तरफ देखकर कहा, मुझे अबॉर्शन करवाना है मानसी, मैं ऐसी सिचुएशन में बच्चे पैदा नहीं कर सकती। जब हम दोनों के बीच ही कुछ ठीक नहीं है तो ऐसे में बच्चे पैदा करने का रिस्क नहीं ले सकती मैं। तुम पागल हो गई हो जो ये डिसीजन ले रही हो, ऐसा होने के बाद तुम दोनों के बीच में और दूरी आ जाएगी। भले ही आरव की जिद पूरी हो जाए लेकिन तुम दिल ही दिन में उसे माफ नहीं कर पाओगी, मानसी ने हैरानी से कहा। उसे आयु का ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मैं नहीं जानती आगे हम दोनों का क्या होगा या फिर ये रिश्ता रहेगा भी या नहीं, फिलहाल इस रिश्ते को बचाने के लिए मैं इतना ही कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं आरव सही है और अगर आगे कोई कॉम्प्लिकेशन आए तो वो फिर से इस बात को लेकर मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाएगा कि मैंने उसकी बात नहीं मानी और अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं शाम को मिलती हूँ तुम्हें, तब तक तुम पूरी तैयारी कर लेना। आयु अपने फैसले पर अड़िग थी। उसने मानसी को सब बताया और फिर वहाँ से जाने लगी। मानसी ने उसे रोकते हुए कहा, तुमने इस बारे में आरव या अपनी फैमिली से बात की? कल रात को इस बारे में सबसे बात हुई थी और सब यही चाहते हैं कि मैं अबॉर्शन करवा लूँ। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो ये डिसीजन मेरे लिए ही ले रहे हैं ताकि आगे मुझे दिक्कत ना हो। मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी है, प्लीज तुम शाम तक सारी तैयारियां कर लेना। आई होप यू अंडरस्टैंड। आयु ने इतना ही कहा और फिर वहां से जाने लगी। दूसरी तरफ मुड़ते ही उसकी आंखों से आंसू का कतरा बन गया, अब तक जिसे वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके रखी थी। आयु के जाने के बाद मानसी ने धीरे से कहा, आई एम सो सॉरी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाई। तुमने इन दो महीनों में बहुत मेहनत की थी और देखो अब तुम्हारी सारी मेहनत जाया हो गई। मैं तुम्हारा दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ डॉक्टर ओबेरॉय, बट मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मानसी को आयु के लिए बुरा तो बहुत लग रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसने अपनी टीम को कॉल करके शाम को आयु के अबॉर्शन की पूरी तैयारियां करवा ली थी। वहीं दूसरी तरफ आयु के जाने के बाद गौरवी जी दोपहर के वक्त खाने के साथ आरफ के कमरे में पहुंची। आरफ की तबीयत खराब थी, ऊपर से वो काफी लोभी फील कर रहा था, इसलिए वो सो रहा था। हालांकि उसे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी उसकी आंख बंद थी। गौरवी जी उसके पास आई और उसे उठाते हुए बोली, चलो उठो और कुछ खा लो। एक तो तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ते रहते हो, कौन कह सकता है कि तुम दोनों के बच्चे होने वाले हैं, अभी तुम्हारा बचपना ही खत्म नहीं हुआ है। बोलते हुए गौरवी जी आरफ के पास बैठ गई। आरफ ने आंखें खोली और फिर उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। उसके बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, इस वजह से उसे उठने में दिक्कत हो रही थी। तुम तो बहुत बीमार लग रहे हो, आयु ने तुम्हें कुछ मेडिसिन दी होगी, मुझे बता दो मैं ला देती हूँ। जाते वक्त वो भी काफी उदास थी और न जाने क्या बोल रही थी, गौरवी जी ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर इधर उधर दवाइयां ढूंढने लगी। क्या कह रही थी वो, आरव ने सामान्य तरीके से पूछा। गौरवी जी ने आरव की तरफ देखा और कहा, पता नहीं कुछ समझ नहीं आया, बोल रही थी कि तुम जो चाहते हो वो वही करने जा रही है। अच्छा क्या चाहते हो तुम जो वो करने वाली है, मुझे भी तो पता चले। आरव ने गौरवी जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, उसने आयु की बात को काफी हल्के में लिया था। वहीं दूसरी तरफ आयु अपनी शिफ्ट खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि आज शाम अबॉर्शन करवाकर वो आरव और अपने बीच सब सही कर सके।